आरज़ू ताली में कुरआन आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر وہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا تعارف، وہ مکی ہے یا مدنی؟ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں وہ مکی ہیں اور کئی صورتیں مدنی ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے 114 کل صورتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، اور ان میں سے 86 صورتیں یعنی 86 یہ صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور بقیہ 28 یہ صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں سے مراد ہجرت سے قبل جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور مدنی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت کے بعد جن کا نزول ہوا۔ آج جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ الحجر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ ابراہیم کے بعد سورۃ الحجر ہے، اور 14 پارے کے ابتدا سے بلکہ 13 پارے کی آخری آیت سے گویا کہ یوں کہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے 6 رکوع اور 99 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام حجر اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وہ حجر تھا، اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا یہ نام بیان ہوا۔ اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الحجر کا نام دیا گیا۔ ہجر کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا، اسی لیے عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں اچھے برے چیزوں کی عقل تمیز دیتی ہے اور برے کاموں سے ہمیں روکتی ہے، تو اس لیے اسے بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ اس مقام ہجر کے حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی، اور چونکہ اس وادی پر وہ لوگ بھی تھے قوم سمود والے کہ جن کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چونکہ وہاں تھی، اور وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو کنواں تھا اس میں ایک دن تم لوگ پانی بھرو اور ایک دن وہ اونٹنی کے لیے پانی چھوڑ دو، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہاں سے پانی پیا کرتی تھی۔ بالآخر اس قوم نے اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کی اور اس اونٹنی کی بھی ٹانگوں کو کونچوں کو کاٹ دیا، اور وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی وہی عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم جنہوں نے کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے उन जुल्म करने वालों के घरों में रोते हुए दाखिल होना ताकि तुम पर वही अजाब ना नाजिल हो जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से सर और चेहरा मुबारक ये ढांप लिया और उस वक्त आप सवारी पर थे और यानी उस मकाम से जब आप गुजरते, और ये हमें बाकायदा कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी दर्स मौजूद है, हदीस तय्यबा के अंदर भी ये जिक्र मौजूद है कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नाजिल हुआ और जो अजाब की जगह हैं उनके पास ना जाओ, वहां ना रुको ना वहां ठहरो, और अगर वहां जाना भी है तो रोते हुए अल्लाह से पनाह मांगते हुए उन जगहों से गुजर जाना है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि जल्दी जल्दी से वहां से आप अपने काफिले गुजार लेते थे और जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को आप इरशाद फरमाया करते थे। सूरह हिज्र के मजामीन की तरफ बढ़ते हैं। ये सूरह मुबारक मक्का मुकरमा में चूंकि नाजिल हुई और दीगर सूरतों की तरह इस सूरह मुबारक के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, अल्लाह की कुदरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और आमाल की जजा मिलने, ये सारे मामलात को कई दलाइल के साथ इस सूरह मुबारक के अंदर बयान किया गया। एक और बात, बड़ी अहम बात, कुरान मजीद फुरकान हमीद की हिफाजत की जिम्मेदारी ये खुद अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर, अपने जिम्मा रहम पर ली, तो इस सूरह मुबारक के अंदर इसको भी बयान फरमाया गया है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला के अंबिया और रसूलों के साथ कुफार ने, मुशरिकीन ने जो तर्ज अमल इख्तियार किया उसको भी इस सूरह मुबारक के अंदर बयान किया गया। हजरत आदम अली सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया, आदम अली सलाम की जो तखलीक हुई और शैतान सजदा ना करने की वजह से मर्दूद ठहरा, ये भी मजामीन दीगर पारों के अंदर भी जिक्र हुए। उसके साथ साथ सूरह हिज्र के अंदर भी अल्लाह ने इसे जिक्र फरमाया है और शैतान की उस मोहलत को भी बयान किया है जो उसने मोहलत मांगी और उसे वो मोहलत दी गई। आइए नाज़रीन किराम, अब बढ़ते हैं कुछ इन मजामीन की तरफ और उन आयात मुबारक की तरफ। सबसे बेसिक और पहली आयत मुबारक जिससे सूरह मुबारक का सबब नुजूल और शान नुजूल भी बयान हुआ, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, रुबा मा यवद्दुल लदीन कफरू लव कानू मुस्लिमीन। कुफार ये आरजू करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते। हदीस पाक में हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब दोज़ की जहन्नम में जाएंगे, काफिर भी जहन्नम में जाएंगे, तो उनके साथ मुसलमान भी कुछ जहन्नम में होंगे। अब जब काफिर उन मुसलमानों को देखेंगे तो वो कहेंगे हम भी सजा में, तुम भी सजा में, तो तुम्हारे इस्लाम ने, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें क्या फायदा पहुंचाया। वो उन पर एक गोया के एक सवाल उनसे करेंगे तनकीद के तौर पर, तो मुसलमान उन्हें जवाब देंगे कि हमारे कुछ गुनाह थे जिन पर हमारी गिरफ्त हुई और उनकी सजा की वजह से हमें जहन्नम में डाला गया है। अब ये जो सवाल और इस पर मुसलमानों ने जो काफिरों को जवाब दिया, दिया दोजक में, जहन्नम में, तो कहा ये बातें सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा कि जितने मुसलमान हैं इनको दोजक से निकाल लिया जाए, यानी इनकी उस दौलत ईमान की बरकत से ही इनको कहा जाएगा इनको दोजक से निकाल लें। तो अब जब इनको दोजक से निकाल लिया जाएगा तो काफिर देखेंगे कि हाँ ये गुनाह की वजह से तो जहन्नम में आए थे लेकिन अब इन्हें निकाल लिया गया। रुबामा यबद्दुल लदीन कफरू लव कानू मुस्लिमीन, तो फिर वो तमन्ना करेंगे, आरजुएं करेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते तो यहां से निकल जाते, इस अजाब से हमें छुटकारा मिल जाता और हम बच जाते। कहा कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत मुबारक तिलावत फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबि व कुरआनिम मुबीन, रुबमा यबद्दुल लदीना कफरू लव कानू मुस्लिमीन। ये किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं, काफिर बहुत आरजुएं करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। नाज़रीन इकराम, इससे पता चला कि ईमान कितनी बड़ी अजीम दौलत है। ईमान के साथ खातिमा गुबाई, ईमान बचाकर, ईमान पर इस्तेकामत के साथ दुनिया से चले गए, तो तो अगर कोई मुसलमान अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला भी जाएगा, बिल आखिर वो जहन्नम से जरूर बाहर निकलेगा और जन्नत उसका मुकद्दर होगी, जन्नत में दाखिला उसका होगा। लेकिन जो काफिर हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में होंगे और वो हसरत करेंगे। क़यामत के दिन हसरत दोनों की होगी, काफिर भी हसरत करेगा और मुसलमान भी हसरत करेगा। आप हैरान होंगे मुसलमान कैसे हसरत करेगा। काफिर हसरत इसलिए करेगा कि काश मैं ईमान ले आता, अगर ईमान लाता तो मैं भी मुसलमानों वाले इनामात पा लेता। लेकिन उसकी ये हसरत अफसोस वाली हसरत होगी कि मैं मुसलमान नहीं हुआ, अब मेरा हाल ये है। लेकिन मुसलमान भी यानी नेक लोग भी हसरत करेंगे कि काश मैं अपने आमाल के अंदर और बेहतरी लाता, आमाल में ज्यादती पैदा करता, नेक अमल ज्यादा करता। इसमें कोई ऐसा नेक शख्स नहीं जिसको ये हसरत नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर बंदा अपनी पैदाइश के दिन से अपने चेहरे के बल गिर जाए, हत्ता के अल्लाह की इताअत में बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होकर इसी में ही मर जाए, तो उस दिन यानी क़यामत के दिन वो इबादत को हकीर समझेगा और तमन्ना करेगा कि मुझे दुनिया में लुटा दिया जाए ताकि वो अजर व सवाब और ज्यादा करे। यानी मुसलमान की ये तमन्ना मजीद कुर्ब इलाही के हुसूल के लिए होगी। इबादत जितनी भी होगी तमन्ना ये करेगा कि दुनिया में लुटा दिया जाऊं और इबादत करूं और इबादत करूं। नाज़रीन किराम, अभी मौका है, हर एक के पास मौका है। ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत में कब्र में चाहेगा भी तो वो कोई इबादत नहीं कर पाएगा। उसी इबादत का इनाम और सवाब उसे कब्र में भी मिलेगा, हशर में भी मिलेगा, जो दुनिया के अंदर वो करके गया है। तो इसलिए अपनी इबादतें, रियाजतें, कुर्ब इलाही के हुसूल, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिशें शामिल रखनी चाहिए। और काफिर जैसे क़यामत के दिन हसरत करेगा, दुनिया के अंदर वो लज्जतें देख रहे हैं, मकानात, आली शान, पैसा, लज्जतें, ख्वाहिशात, ये सब चीजें दुनिया के अंदर है क्योंकि वो इस्लाम की बाउंड्री में नहीं है, आजाद है। इसलिए फरमाया मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी इसके लिए तो एक कैद है कि ये एक बाउंड्री के तहत रहता हुआ अपनी जिंदगी को गुजारता है। तिजारत है, नौकरी है, मुलाजमत है, आप एक दूसरे के मामलाते हैं, हुकूक हैं, खरीदो फरोख्त है, निकाह है, जो भी मामलाते हैं वो शरीयत के मुताबिक है। फिर अपनी इबादत वाले सिलसिले भी इसमें हैं। तो मोमिन अपनी जिंदगी को एक महदूद तरीके से गुजारता है। काफिर दुनिया के अंदर तो बड़ी ऐशो इशरत के साथ कि वो बज़ाहिर कहता है कि मेरे ऊपर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने उन मुशरिकीन के हाल को भी बयान किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون। आप इन्हें छोड़ दें, आप इन्हें छोड़ दें, खाएं बरतें और उम्मीद उन्हें खेल में डालें। यानी आप वो एक उम्मीद पर हैं और जैसे कहते हैं लंबी लंबी उम्मीदें, वो इस उम्मीद पर हैं और अनकरीब वो जान जाएंगे। यानी दुनिया के अंदर तो ये ईमान, इताअत, कुर्बे इलाही, इस तरह के काम करने से ये गाफिल हैं, लेकिन जब आखिरत में आएंगे तो फिर फसौफ़ यालमून, ये फिर जान जाएंगे कि काश उस वक्त ये काम कर लेते, हमें ईमान की दौलत मिल जाती, नेक आमाल करते, आमाले सालिया के वजह से कोई मकाम मर्तबा हासिल करते, ये उस वक्त तमन्ना करेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर अब इनसे इन्होंने अपनी एक लंबी उम्मीदें बांध ली हैं, तो लिहाजा आप इन्हें अब इनके हाल पर छोड़ दीजिए। नाज़रीन किराम, ऐसी लंबी उम्मीदें जिसके अंदर आदमी आखरत की फिक्र से गाफिल हो जाए तो ये मुजम्मत वाली है, ये मुजम्मत वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े बूढ़े का दिल भी दो बातों में हमेशा जवान रहता है। यानी बूढ़ा हो गया है लेकिन दो बातों में उसका दिल बड़ा जवान है। वो दो बातें कौन सी है? दुनिया की मोहब्बत और नंबर दो उम्मीदों की दराजी में। यानी बूढ़ा भी है और वो फिर भी उसे एक लंबी लंबी उम्मीदें होती हैं, एक लंबी लंबी उम्मीदें। दुनिया में माल की मोहब्बत ये दिल से निकलती नहीं इल्ला माशाअल्लाह। यानी अमूमन बूढ़े हो चुके हैं, वक्त वो है कि बज़ाहिर उन जैसा अब कोई दुनिया में है ही नहीं। यानी अपने इर्द गिर्द वो देखें, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तो कई दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन क्या है, उम्मीदें लंबी, कि जो आदमी यही सोच लेता है किसी की मौत की खबर आने के बाद कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो नहीं होगा, वो बीमार है, मेरे साथ तो ऐसा मामला नहीं है। हालांकि बाज वक्त बीमारियां एक जैसी हैं, बीमारियां एक जैसी है, वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, शूट हुआ और ये मामला हो गया, ये भी ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो शुगर का मरीज है, ये भी शुगर का मरीज है, लेकिन फिर भी चूंकि एक लंबी उम्मीदों पर एक बुनियाद रखी हुई है और लंबी लंबी उम्मीदें हैं और दुनिया की वो मोहब्बत ऐसे दिल के अंदर छाई हुई है, फरमाया बूढ़े के दिल से भी ये दो बातें जवानी वाली होती हैं, यानी दुनिया की मोहब्बत भी नहीं निकलती और लंबी उम्मीदें भी नहीं खत्म होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर दो बातों का ज्यादा खौफ है, दो बातों का खौफ है, एक है ख्वाहिशात की पैरवी करना और एक लंबी उम्मीदें करना, मुझे अपनी उम्मत पर इन दो बातों का खौफ है। और एक और हदीस में इरशाद फरमाया सहाबा इकराम अली मिर्दवान से खिताब करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया खुदा की कसम मुझे तुम्हारी मुफलिसी का कोई डर नहीं है कि तुम गुर्बत की वजह से मुफलिस हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, इस इफलास इस मुफलिसी का मुझे कोई डर नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में डर ये है कि तुम पर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी जैसे तुमसे पहले लोगों पर दुनिया कुशादा कर दी गई, और तुम भी उस दुनिया से ऐसे प्यार करने लग जाओगे जैसे वो लोग करने लग गए थे, और फिर इस सबब से हलाकत तुम्हें मिलेगी। अल्लाह अकबर, इस सबब से यानी तुम हलाक हो जाओगे, हलाकत में पड़ जाओगे। यानी आपने फरमाया मुफलिसी का डर नहीं है, मुफलिसी का डर नहीं है, बल्कि डर ये कि दुनिया तुम पर कुशादा आ जाएगी। आज कुछ लोग इसी तरफ इतना मुबतला हो जाते हैं, याद रखें इससे किसी के भी सैरी नहीं होनी, शिकम सैर नहीं होना, यानी इंसान एक चाहता है तो उसके बाद उससे डबल, फिर वो तो उससे डबल, फिर वो तो उससे डबल, ये एक लंबी उम्मीदें और लंबी ख्वाहिशात ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, इल्ला ये कि जो अल्लाह और उसके रसूल का डर खौफ इताअत इत्तिबा का जज्बा दिल में रखते हुए दुनिया के अंदर वो ऐसी कमाई और अपने मामला चलाता है कि जिसकी वजह से वो किसी के सामने मोहताज ना हो, मांगता नहीं है, भीख नहीं मांगता है, बस इतना दुनिया से भी लेता है और साथ साथ अल्लाह को भी याद करता है और रब को राजी करने वाले काम भी करता है, ऐसा ही करना चाहिए। मजीद कुछ मजामीन की तरफ बढ़ते हैं। सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 में कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के जिम्मे करम पर है, सुबहान अल्लाह, यानी ये हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे रखी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा वइन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हमने उतारा है ये कुरान और बेशक हम खुद इसके निगेबान हैं, हिफाजत करने वाले हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा वइन्ना, ये खुद ताकीद है, वइन्ना लहू लहाफिज़ून, लामे ताकीद यहां पर भी बयान की गई, बार बार ये ताकीद को बयान कर दिया गया कि हमने उतारा है, इसकी हिफाजत भी हम करने वाले। ये कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ली है, जिसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ली, और सारी मखलूक इंसान जिन क्यों ना हो, ये सारे भी मिलकर अगर कुछ करने लग जाए तो एक हर्फ की भी तब्दीली कुछ नहीं होगी, कोई लफ्ज की तब्दीली नहीं कर पाएगा, और अल्लाह ने ऐसा इसकी हिफाजत का एहतमाम फरमाया है। तो ये कुरान की ये शान है, ना इसकी मिसल कोई कलाम ऐसा ला सका, एक सूरत भी ना बना सका, एक आयत भी ना बना सका, और फिर यह है कि ना इसमें किसी तरह की वो तब्दीली कर सका। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है कि जब भी किसी ने ऐसी कोई हरकत की है, इसमें कोई तहरीफ और तब्दीली करने की कोशिश की है, तो वो हरगिज हरगिज कामयाब ना हो सका। और तारीख में ऐसे कई वाकयात हुए भी कि कसदन लोगों ने करना चाहा, और इसका मतलब क्या है नाज़रीन किराम के, ये कलाम महफूज है, किताब महफूज है, मतलब ये कि अगर कोई छाप कर भी आ जाए, बरक्स छाप दे, 21वां पारा पहले लगा दे, 9वां पारा बाद में लगा दे, ये पारा इधर लगा दे, 8वां पारा बाद में लगा दे, तो इसको उम्मत कबूल ही नहीं करेगी। मुराद इसके ये नहीं है कि कोई ये हरकत करके आए और कहे कि ये देखो मैंने तब्दीली कर दी, तो ये तब्दीली नहीं है, ये तहरीफ नहीं है, यानी ये उम्मत उसको कबूल ही नहीं करेगी, क्योंकि मुसलमानों के बच्चों बच्चों के दिलों में अल्लाह ने कुरान पाक डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है इस उम्मत के अंदर, और ये खासा है इस उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मामून रशीद के पास एक मरतबा एक शख्स आया, बड़ा खूबसूरत कलाम करने वाला, शानदार गुफ्तगु करने वाला, तो मामून रशीद ने कहा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, इस्लाम की दावत दी, तो उसने उस वक्त इनकार कर दिया। अच्छा, यही शख्स एक साल बाद आया اور مسلمان بھی ہو گیا اور بڑی فقہ کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کرنے لگا. مامون رشید نے کہا کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے, تم پہلے آئے تھے تو انکار کر دیا آپ ایسے. اس نے کہا کہ میں نے اصل میں سارے مذاہب کو کچھ جانچنا چاہا تو میں نے تورات کو لیا اور اس تورات کے میں نے 3 نسخے لکھے اور ان کے اندر کمی بیشی کر دی, کچھ آگے کچھ پیچھے کچھ نکال دیا, اور یہ میں ان کی عبادت گاہوں میں لے کے گیا کہ بھائی میں نے نسخے تیار کیے تو کوئی خریدار تو انہوں نے مجھ سے خرید لیے. اس زمانے میں لوگ باقاعدہ لکھ لکھ کر ہی اسی طرح فروخت کرتے تھے, تو انہوں نے مجھ سے خرید لیے. کہا میں نے انجیل کو تیار کیا اور اسی طرح اس میں تحریف کر دی آگے پیچھے کر کے, میں ان کے یہاں گیا تو انہوں نے بھی مجھ سے خرید لیے. پھر میں نے یہی شرارت میں نے کلام پاک قرآن مجید کے حوالے سے بھی کی کہ میں نے تحریف کر کے ان کو لکھا اور میں مسلمانوں کے بازار میں چلا گیا اور میں نے ان کے سامنے یہ نسخے رکھے, تو مسلمان عام مسلمان بھی میری اس غلطیوں پر مطلع ہو گئے, ان کو پتا چل گیا کس کے اندر کیا حرکت کی گئی ہے, تحریف اور تبدیلی کی گئی ہے, انہوں نے خریدنے سے انکار کر دیا. تو میں سمجھ گیا جو کتاب جس کی حفاظت کی گئی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے وہ دین بھی سچا ہے, اسلام بھی سچا ہے, اس لیے میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے, میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا. تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ قرآن پاک کے اندر تبدیلی لائے گا مسلمان اسے قبول نہیں کریں گے. آپ دیکھیے اللہ نے کیسی اس کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنا دیا, بچہ بچہ اپنے سینے میں پورا پورا قرآن, ایک زبر زیر آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے. تراویوں میں اس کا عام مشاہدہ ہوتا ہے, لوگ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں, چھوٹا چھوٹا بچہ غلطیاں بتا رہا ہوتا ہے, لقمے دے رہا ہوتا ہے, تو کیسے یہ ان کے دلوں کے اندر یہ محفوظ ہے. اور یہ الحمدللہ مسلمانوں کی ایسی اکثریت ہر وقت رہے گی کہ کوئی بھی اگر قرآن مجید کے حوالے سے کسی طرح کی ادنا بھی شرارت کرے گا تو وہ اس کی اس شرارت کو بھی قبول نہیں کریں گے اور اس کی غلطی اس کو بتائیں گے. یہ قرآن پاک اسی طرح یہ محفوظ ہے اور یہ محفوظ رہے گا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا نور, قرآن کا فہم عطا فرمائے, نور قرآن سے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. سورۃ الحجر کے کچھ مضامین پر گفتگو ہوئی ہے, مزید انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں دیگر مضامین پر کچھ گفتگو کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن.